उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, शिष्य गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में 11वें स्कंद के 15वें अध्याय पर चर्चा है। इसके पहले श्लोक को दोहराएंगे। श्री भगवान उवाच, जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयते मयि धारयतेश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। श्रीभगवानुवाच, जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतेश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। श्री भगवान उवाच, जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतेश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। श्री भगवान उवाच, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जितेन्द्रियस्य, जिसने अपनी इंद्रियां जीत ली हैं, युक्तस्य, जिसने मन को स्थिर कर लिया है, जितश्वासस्य, जिसने प्राणायाम पर विजय पाली है, योगिनः, ऐसे योगी का, मई मुझमें धारय स्थिर करते हुए, चेतः अपनी चेतना उपतिष्ठन्ति प्रकट होती हैं, सिद्धयः योग की सिद्धियां। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, योग सिद्धियां उस योगी द्वारा अर्जित की जाती हैं जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो, अपने मन को स्थिर कर लिया हो, प्राणायाम में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली हो और जो अपने मन को मुझ में स्थिर कर चुका हो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरव श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
सर्वशास्त्राभिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरौ मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदायीन् अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर।
ये जो अध्याय है 15वां अध्याय, इसमें भगवान सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार किस प्रकार पिछले अध्याय में वर्णन किया था भगवान ने योग का, और किस प्रकार एक योगी को सिद्धियां प्राप्त होती है। तो पहले 32 श्लोकों में भगवान सिद्धियों का वर्णन करते हैं, 8 प्रमुख सिद्धियां, 10 गौण सिद्धियां और फिर 5 बड़ी निम्न सिद्धियां। तो ऐसे इन सिद्धियों का वर्णन करते हैं जो एक योगी को प्राप्त होती है। और फिर 33वें श्लोक से लेकर अध्याय के अंत तक 36वें श्लोक तक भगवान वर्णन करते हैं कि इन सब सिद्धियों की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवद गीता में, पूरे गीता में अलग अलग वर्णन भगवान ने किया, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, बहुत सारा वर्णन किया और अंत में कहा कोई उपयोग नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
तो इन इन सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर भगवान ये कहना चाहते हैं अंत में कि इसका कोई उपयोग नहीं है भक्तों के लिए, तो फिर क्यों वर्णन कर रहे हैं? भक्तों के लिए नहीं है, लेकिन जो भक्त नहीं है वे लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो एक तरफ से उनको भक्ति में लाने के लिए अध्याय है कि आप इतना पीछे भाग रहे हो, लेकिन भगवान अंत में कह रहे हैं कि कुछ है नहीं, और वो सिद्धियां भी भगवान कह रहे हैं केवल मेरी कृपा से प्राप्त होती, तो वो भी अपने बल पर नहीं होती। तो एक दृष्टि से भगवान हर एक व्यक्ति को भक्ति की ओर ला रहे हैं, और जो भक्ति में है उनको बता रहे हैं कि कहीं दूर मत जाओ, कहीं भटक मत जाओ, इसलिए इन सिद्धियों का वर्णन उन्होंने किया। तो जैसे हम लोग ने पहला श्लोक पढ़ा, भगवान कह रहे हैं कि ये कैसे होती हैं ये सिद्धियां जो व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, तो सबसे पहले मन का नियंत्रण होना चाहिए योग विद्या में। दूसरा भगवान कह रहे हैं कि ये किस तरह से श्वास को नियंत्रण करना चाहिए, तो ये सारी चीजों को भगवान मंडन कर रहे हैं कि किस तरह आप मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, और अब अंततः मन को मुझ में लगाओ, श्वास प्राणायाम को वश में करो, ये सब योग की प्रक्रियाएं हैं। तो उद्धव ने प्रश्न किया कि आपने कहा कि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो कौन कौन सी सिद्धियां हैं, कितने प्रकार की सिद्धियां हैं, और क्या हैं ये सिद्धियां, और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये उद्धव का प्रश्न था कि क्या कितने प्रकार की सिद्धियां हैं, क्या हैं ये सिद्धियां, और इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान अब 32वें श्लोक तक सिद्धियों का वर्णन करते हैं, और यही तीन चीजें कहते हैं, सिद्धि का नाम देते हैं, क्या है वो ये बताते हैं, और फिर इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता। हम लोग संक्षेप में सुनेंगे, बहुत विस्तार से नहीं, कहीं आप लोगों का आकर्षण ना हो जाए सिद्धियों के प्रति कि बहुत अच्छा है, बहुत सारी सिद्धियां हैं, इवन जो निम्न सिद्धियां हैं वो भी बड़ी आकर्षक हैं, अपने आप को गायब कर लेना, मिस्टर इंडिया हो जाना, तो ये सिद्धि है। इससे पहले कि हम लोग सिद्धियों की बात सुने, हमें जान लेना चाहिए कि सिद्धि है क्या और क्या हमारे लिए महत्व है। जैसे कोई व्यक्ति शरीर को इस्तेमाल करके कुछ बहुत अजीब क्या कहना चाहिए अद्भुत कार्य कर लेता है। जैसे आप कभी कोई चीज देखने जाओ, कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग अभी जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं पांडे विजय रथ यात्रा के समय जब जगन्नाथ जी बाहर आ रहे हैं, तो उनके सामने वो भक्त बहुत सारे करतब दिखाते रहते हैं। वो आग जली होती है, चार पांच मशाले होती हैं, वो ऐसे घुमाते रहते हैं ऊपर नीचे मशालों को, देखा है आप लोगों ने कभी पांडे विजय में आगे चलते रहते हैं वो करते हैं। तो ये शरीर के करतब है, कोई जादू या कोई भगवान नहीं है, तो वो ऐसे करतब दिखाते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमें भी हो जाए, हम भी जाकर प्रयास करें तो जल जाएंगे। वो लोग ऐसे घुमाते हैं तीन चार मशाले धार धार, या कभी कभी ज्यादा भी होती हैं, आपने और भी कई जगह देखे होंगे, लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, गेंद लेकर ऐसे खेलते रहते हैं, चार पांच छह गेंद होती है, वो गिरती नहीं है, ये सब शरीर के कर्तव्य है। और सिद्धियां क्या है? मन के कर्तव्य। तो शरीर के कर्तव्य हमें दिखते हैं, हम कोई उसको भगवान नहीं मान लेते, लेकिन जब मन के कर्तव्य दिखाई देते हैं तब हमें लगता है कि व्यक्ति भगवान है। तो शरीर और मन के पूर्णता से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा की पूर्णता। इसलिए सिद्धियां भगवान कहते हैं कि भक्ति में बाधा बन जाती है, मदद नहीं करती है, बाधा बन जाती। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे जब उस विभाग पर आएंगे कि भगवान क्यों कह रहे हैं कि बाधा बनती। कभी कभी तो अच्छा लगता है, सिद्धियां हो तो कितना अच्छा होगा। मान लीजिए कि हमारे पास सिद्धि हो कि हम आपके मन की बात जान लें, तो कितना अच्छा होगा ना? अच्छा होगा बुरा होगा? मन की बात जान लें, बहुत बुरा होगा, क्योंकि पता चल जाएगा व्यक्ति क्या क्या सोच रहा है मेरे बारे में। तो हमेशा दुखी रहोगे क्योंकि सारे लोग बुरा सोच रहे होंगे आपके बारे में। या इन सिद्धियों से एक प्रकार का स्वतंत्रता का भाव आ जाता है, नियंत्रक का भाव आ जाता है कि मैं अब नियंत्रण कर सकता हूं, इसके मन को नियंत्रण कर सकता हूं, स्थिति को नियंत्रण कर सकता हूं, कहीं से कुछ भी ला सकता हूं। तो ये सारी सिद्धियां हमें दरअसल भक्ति में बाधा है। तो क्या क्या सिद्धियां हैं? जब उद्धव ने प्रश्न किया बताइए, तो भगवान ने बोलना शुरू किया। भगवान पहले 8 सिद्धियों का वर्णन करते हैं, अष्ट सिद्धि। हनुमान जी के विषय में हम लोग सुनते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। तो ये जो अष्ट सिद्धियां और नवनिधि भी जो है, ये भी सिद्धियों का ही भाग है। निधि मतलब धन को कहते हैं, तो नवनिधि जो है वो भी ये दरअसल सिद्धियों के ही भाग हैं। जो बाकी सिद्धियां आती हैं उसमें आते हैं। तो 8 सिद्धियां भगवान वर्णन करना शुरू करते हैं। पहली का वर्णन करते हैं अणिमा। अणिमा सिद्धि क्या है? बहुत छोटे हो जाना। हनुमान जी ने कब इस सिद्धि का उपयोग किया था? लंका जब पहुंचे थे, लंकिनी थी, खड़ी थी, जाने नहीं देंगे, घूम रही थी। तो हनुमान जी बड़े छोटे से होकर सोच रहे थे कि अंदर से चले जाएं, लेकिन फिर भी रोक लिया था लंकिनी ने, और फिर हनुमान जी ने एक बड़े होकर थोड़ा थप्पड़ मारा था उसको। तो अणिमा क्या है? छोटे से छोटे हो जाना। और ये कैसे प्राप्त होती है? भगवान को अणु रूप में, कण कण में भगवान है, हम लोग ये जानते हैं। तो हर अणु में, एटम में भगवान है। तो भगवान को बहुत सूक्ष्म मानकर अणु रूप में उनकी पूजा की जाती है। भगवान कहते हैं तब मुझे, तब ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो अणिमा सिद्धि इस तरह से प्राप्त होती है। हाँ, ये सिद्धियों के लिए बाकी योग के नियम करना आवश्यक है, उसके बाद ये भी भगवान को इस रूप में पूजना आवश्यक है। तो यम नियम, प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि, वो सब तो है ही, लेकिन एक विशेष रूप से जो उसके साथ किया जाता है जिससे एक सिद्धि प्राप्त होती। तो अणिमा है बहुत छोटे हो जाना। महिमा क्या है? बड़े से बड़ा हो जाना। ये हनुमान जी ने कब प्रकट किया? बहुत बड़े से बड़े हो रहे थे। हाँ, कौन सी थी वो राक्षसी? सुरसा। ओके, सिंह का बाद में आई सुरसा। सो सुरसा जब आई सामने, तो उसने क्या किया? अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया कि मेरे मुख से होकर ही जाना होगा। हनुमान जी ने कहा देखो मैं कोई थोड़ा जा रहा हूं जरूरी काम से, आने के बाद काम पूरा करके आके जहां बोलोगे वहां प्रवेश करके निकल जाएंगे। लेकिन उसने सुना नहीं, उसने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया। तो उस समय हनुमान जी भी उतने बड़े हो गए। उसने और मुंह बड़ा किया, हनुमान जी और बड़े हो गए। उसने और मुंह बड़ा किया, ऐसा वर्णन है कि उस समुद्र में थे, समुद्र से लेकर आकाश तक उसका मुंह हो गया, हनुमान जी भी उतने बड़े हो गए। सो इसको कहते हैं महिमा, महिमा सिद्धि। तो ये अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान को महत्त्व के रूप में देखते हुए, जब हम भगवान को देखते हैं, जैसे महत्त्व मतलब जैसे एक शरीर है उसमें आत्मा होती है, तो ये जो ब्रह्मांड है इनकी आत्मा कौन है? भगवान। तो जब ऐसे भगवान को ध्यान किया जाता है, और साथ ही साथ आकाश पर, हवा पर जब मन केंद्रित किया जाता है, तो तब ये महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। अब आप विस्तार में मत पूछिएगा कि कैसे करना है, हम लोग भी प्रयास करें। जितना भगवान ने कहा हम लोगों ने उतना सुन लेना है ज्यादा उस पर, क्योंकि लास्ट में भगवान रिजेक्ट कर रहे हैं, तो क्यों इतना हम लोग दिमाग लगाएं कि कैसे होना है, कौन कैसे महत्त्व पर हम ध्यान करें, जब करना ही नहीं जिस चीज को, तो उसको सोचने की, इसलिए हमने ज्यादा उस पर रिसर्च ही नहीं किया। जब करना ही नहीं है तो क्या विस्तार से बताएं कि कैसे महत्त्व होता है, कैसे उसको करना है, क्योंकि अंत में भगवान रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सुन लेना है केवल इसलिए कि हमारे लिए आवश्यक नहीं। अगर हम बड़े छोटे से छोटे हो भी गए, बड़े से बड़े हो भी गए, तो क्या फायदा है? तो फिर हनुमान जी के पास क्यों थी? हनुमान जी ने क्यों उपयोग किया? अगर ये बाधा है भक्तों के लिए आवश्यक नहीं है तो फिर हनुमान जी ने क्या, हनुमान जी इतने महान भक्त हैं। सो अगर कोई हनुमान जी के स्तर का भक्त है और वो इन सिद्धियों का उपयोग केवल भगवान की सेवा के लिए करता है तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों में से किसी को सिद्धि प्राप्त हो जाए, ना तो हम लोग हनुमान जी के स्तर कर हैं और ना भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमें इस जगत में थोड़ा सिद्धि छोड़िए, थोड़ी सी शक्ति पावर मिल जाती है, हम भगवान के लिए यूज नहीं करते, तो फिर सिद्धि मिल गई तो क्या होगा। सो हनुमान जी, और वो भी ऐसा नहीं कि हनुमान जी हर जगह दिखाते फिर रहे थे, कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, जब आवश्यकता पड़ी तभी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, नहीं तो ऐसा नहीं था कि हर जगह जानते नहीं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ऐसा कुछ नहीं किया हनुमान जी ने। हम लोग ऐसा करेंगे, अष्ट क्या एक मिल जाए हम लोगों को सिद्धि, देखो दुनिया भर में आपके वो फोटो लग जाएंगे और आप ऐसे वो स्वामी जी के अखंडलेश के महामंडलेश्वर और वो सब बनकर ऐसे हो जाओगे, एकदम सर के पीछे वो तेज निकलता हुआ और ऐसे हाथ रखकर, हाँ महामंडलेश्वर स्वामी टेंजिंग महाराज की जाए, यस तो एक सिद्धि मिल गई तो हम लोग यही करेंगे, भगवान की भक्ति सब भूल जाएंगे। सो अणिमा महिमा और फिर लघिमा, तीसरी लघिमा क्या है, बहुत हल्के हो जाना। ऋषि मुनियों में ये सिद्धि होती है, इसीलिए वे सूर्य की किरण को पकड़कर ट्रैवल कर लेते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं। तो हल्के से हल्का हो जाना, तो ये कैसे होता है कि भगवान अपने मन को आकर्षित करना होता है, अगेन भगवान के जो अणु रूप है भगवान का उस पर। फिर अगली सिद्धि है प्रकाम्य। प्रकाम्य का मतलब है कि हम इस जगत में भी जितने बहुत सारी चीज हैं उनका भोग कर सके, आनंद ले सके, जो भी भोग करने की वस्तुएं हैं तो उसको हम अनुभव कर सके। तो ये सिद्धि प्राप्त होती है जब हम भगवान के परमात्मा रूप पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, और वो ऐसे जिसमें हमारे हृदय में बहुत ज्यादा इस जगत के जो काम हैं, वासनाएं हैं, उनके प्रति आकर्षण होता है, या कहना चाहिए सकाम कर्मों के फलों के प्रति बहुत आकृष्ट होते हैं, और इस भावना को रखकर जब परमात्मा के हम लोग परमात्मा पर पूर्ण रूप से अपना मन केंद्रित करते हैं, तब हमें ये प्रकाम्य सिद्धि, क्यों इच्छा क्या है सकाम कर्म भोगने की, तो इसलिए प्रकाम्य सिद्धि प्राप्त होती है। और फिर अगली सिद्धि है इशिता। इशिता का अर्थ क्या है, माया की शक्तियों में कई और शक्तियां हैं, माया एक प्रमुख शक्ति का नाम है, भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। सो उसकी उन शक्तियों को, इशिता मतलब उनकी माया की उन शक्तियों को हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सके या मैनिपुलेट कर सके, क्या कहते हैं मैनिपुलेट करने को, समझ गए ना आप लोग, बेकार में हम भी क्यों हिंदी सोचे, मैनिपुलेट कर सके उसको, तो ये इशिता कहा जाता है। और इशिता प्राप्त होती है जब हम भगवान के रूप पर जो काल के रूप में हैं, तो भगवान के काल रूप पर जब हम अपना ध्यान मन पूरा केंद्रित कर देते हैं तब ये इशिता प्राप्त होती है। अगली सिद्धि है वशयिता या वशिता, वश में करना। तो वशिता सिद्धि क्या है कि वो तीन गुणों को भी वश में कर सकते हैं, तो तीन गुणों के द्वारा वो प्रभावित नहीं होते या उनको बाधा नहीं आती इस जगत में, कोई भी कार्य करने में तीन गुण बाधा नहीं देते, ये वशयिता है। तो ये होता है जब भगवान नारायण, उनके नारायण रूप पर हम पूरा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए सारा हम क्यों वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह प्राप्त होता है, ये बताने के लिए कि ये सिद्धियां भी भगवान ही देते हैं, आप केवल अपने प्राणायाम इत्यादि से सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। उनके साथ जब भगवान के नारायण रूप पर बहुत ध्यान केंद्रित किया जाए तब भगवान इसको प्रदान करते हैं। और अंतिम है आठों में, आठ में से काम वशायिता। काम वसाहिता मतलब हम जो भी हमारी कामना है कहीं से भी लाना है हम उसको ला सकते हैं। अगर हमारी इच्छा हुई कि यहाँ बैठे बैठे हमें हिमाचल के सेब को खाना है तो हम उसको अभी प्राप्त कर सकते हैं, या इटली में पिज्जा बहुत अच्छा मिलता है तो वहां से हमें कुछ चाहिए तो अभी आ सकता है, राइट। ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं, तो ये सिद्धि है। हम जानते हैं, एक्चुअली हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, नहीं तो हर ब्रह्मचारी कम से कम ये सिद्धि तो प्राप्त करना चाहेंगे कि जो चाहिए खाने के लिए आराम से मिल जाएगा, राइट। सो ये होती है जब इसमें मन पूरा शुद्ध हो, ऐसे बहुत सरलता से नहीं है, मन को शुद्ध होना चाहिए और निराकार ब्रह्म पर जब बहुत ध्यान लगाया जाता है तो तब उनकी ये जो इच्छाएं हैं पूरी होती हैं। सो परमात्मा पर या निराकार पर कोई ना कोई प्रकार से हमें भगवान के एक रूप पर ध्यान जरूर करना होता है, तभी ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। फिर आगे भगवान अन्य गौण सिद्धियों को कहते हैं, अब उसको विस्तार से हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो अन्य सिद्धियां हैं, जैसे वो वर्णन करते हैं कि अपने आप को भूख से, प्यास से या जो भी शारीरिक कष्ट हैं उनसे मुक्त कर लेना। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना, कितना आनंद आएगा, कोई प्यास नहीं लगे, भूख नहीं लगे। तो इसको अनुर्मी मत्वम कहते हैं। तो ये एक सिद्धि है कि अपने आप को कर लेना। और ये भी होती है जब हम भगवान के उस रूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिस रूप में भगवान श्वेत द्वीप में रहते हैं। ये सारा वर्णन भगवान ही कर रहे हैं, कैसे प्राप्त करना है, क्या करना है। अगली सिद्धि है जहां हम बहुत दूर कुछ चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हम सुन सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी अगर सुखताल में बैठे कथा कर रहे हैं, हम लोग यहां से सुन सकते हैं। देखिए सिद्धि ऋषि मुनियों को थी। कई बार प्रश्न आता है कि सुखदेव गोस्वामी ने 88,000 ऋषि मुनियों को प्रवचन दिया कैसे, माइक सिस्टम नहीं था, और होता भी तो इतना बड़ा माइक सिस्टम कहां से लाते हैं। 88,000 लोग अगर एक साथ बैठकर सुन रहे हैं, कितना पावरफुल साउंड सिस्टम चाहिए। हम लोग 2,000 लोगों के लिए लगाते हैं तो कभी कभी पीछे से आवाज आती है, ठीक से आवाज नहीं आ रही है। 88,000, उनको ये सिद्धि थी, दूर बैठे व्यक्ति को भी वो सुन सकते हैं, तो इसलिए उनको बहुत स्पष्ट सुनाई दे रहा था। तो ये एक प्रकार की सिद्धि होती है। तो ये कैसे आता है, जो भगवान के द्वारा ध्वनियां प्रकट की गई हैं, जो आकाश से होती हैं, पांच तत्वों में से एक आकाश है जो ध्वनि प्रकट करता है, तो उसको उसके ऊपर ध्यान करके ये किया जाता है। फिर अगली सिद्धि है दूरदर्शनम, दूरदर्शन या दूरदर्शनम, बाहर बहुत दूर की चीजों को बैठे बैठे देख लेना। सो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हमें ऐसी कुछ चीज प्राप्त करनी है तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत है ये सब करने के लिए, है ना, क्या जरूरत है। जैसे कोई व्यक्ति अभी अमेरिका में बैठ के बोले तो हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, बड़े आराम से सुन सकते हैं, टेक्नोलॉजी है। अब उसके लिए सिद्धि प्राप्त करने की क्या जरूरत, दूरदर्शनम होता है ना, कहीं पर कुछ चल रहा है लाइव दिखाया जाता है, ये देखो थोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठ कर देख लेते हैं, दूरदर्शनम, तो ये सिद्धि भी मिलती है। अधिकतर ये जो सिद्धियां हैं ये हमारी टेक्नोलॉजी प्राप्त कर चुकी है थोड़ा बहुत, इसीलिए इन सिद्धियों के लिए पीछे भागने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन हमें कृष्ण के पीछे भागना चाहिए। ये जो दूरदर्शनम है, दूर की चीजों को देखना, तो जब हम सूर्य और पर भगवान का जो भगवान ने जो अपने आप को सूर्य के रूप में प्रकट किया है, तो ये जानते हुए कि सूर्य भगवान का प्राकट्य है, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, तो उस रूप में सूर्य को प्रार्थना करने से या सूर्य की तपस्या करने से हम ये सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सो आगे सिद्धि है शरीर को बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, मन की स्थिति से, मन की गति से शरीर को ले जाना। जैसे हम लोग ये मन की गति की बात कहीं और भी सुनते हैं ना, ब्रह्म संहिता में मनोरथेन धावति, मन के रथ पर भागते हैं, तो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि बहुत दूर है अगर कोई मन की गति से भी जाएगा तो इस ब्रह्मांड को पार करना बड़ा मुश्किल है। तो मन की गति से अपने शरीर को चलाना, प्रभुपद एक प्रवचन में उदाहरण दे रहे थे कि मन की गति कितनी तेज है, क्या तेज है। हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका जा सकते हैं, अभी इसी समय अमेरिका का स्मरण किया, अफ्रीका का स्मरण किया, तुरंत पहुंच गए। ये मन की गति। तो मन की गति से अपने शरीर को चलाना मतलब जस्ट सोचा और पहुंच गए। तो हम ये सोच रहे थे कि लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि जब भगवान को पुकारा जाता है तो भगवान आते हैं, गजेंद्र ने पुकारा भगवान आ गए। तो ये तो एक सिद्धि यहां पर कोई व्यक्ति को मिल सकती है कि अगर वो मन की गति से अपने शरीर को चला सकता है तो फिर भगवान जो योगेश्वर है तो वो क्यों नहीं आ सकते, बहुत सरल है। तो ये सिद्धि है। फिर और एक सिद्धि है कि कोई भी अपनी इच्छा अनुसार रूप ले लेना, असुरों में बहुत पाया जाता है ना ये। कोई उदाहरण है, मन से रूप ले लेना जो मन की इच्छा हो। किसने लिया था? पूतना ने लिया, बहुत सुंदर हो गई। शूर्पणखा ने लिया, बहुत सुंदर हो गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो मतलब ये कहने का अर्थ है कि तो असुरों के पास भी है, उसको क्यों प्राप्त करने के लिए भागना, और उससे कोई वो भगवान नहीं बन जाते हैं। अगली सिद्धि है जहां हम दूसरों के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। बड़े खतरनाक चीजें हैं ये सिद्धियां, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना। और आगे सिद्धि है स्वच्छंद मृत्यु, जब इच्छा हो तब मरना। ऐसे कौन उदाहरण है जो इच्छा से मरे? भीष्म देव, जब उनकी इच्छा होगी तब मरेंगे, इच्छा मृत्यु। तो ये एक सिद्धि है। मतलब ये सी, अभी मान लीजिए किसी को मिल जाए, वो 300 चाल होका हो जाए, बोले अभी मरूंगा नहीं, सिद्धि है, तो भगवान नहीं हो जाएगा, एक दिन तो मरना ही है। स्वच्छंद मृत्यु। फिर एक बहुत अच्छी सिद्धि है, देवानाम सह क्रीड़ा दर्शनम। मतलब जो देवता हैं उनके साथ, उनके दर्शन भी कर सके और उनके साथ खेलकूद या जो भी करना चाहे वो कर सके, उनकी लीलाओं में भाग ले सके, ऐसी एक सिद्धि है। तो हम लोग सुनते हैं अर्जुन गए थे कि नहीं, अर्जुन वहां बैठकर वो देख रहे थे, उर्वशी नृत्य कर रही है, अर्जुन देख रहे थे, वहां से अस्त्र शस्त्र लेकर आए। तो ये सिद्धियां हैं जिसमें जाकर आप देवताओं के साथ भी उनकी लीलाओं में भाग ले सकते हो। और एक सिद्धि है जिसमें अपने जो उद्देश्य है या जो आदेश है उसको कोई रोक नहीं सके, आपने आदेश दिया वो पूरा होगा ही, ऐसी भी एक सिद्धि है। फिर इन सिद्धियों का वर्णन करने के बाद भगवान वर्णन करते हैं पांच और सिद्धियों का जो बहुत निम्न मानी जाती हैं। पहली सिद्धि कि आप पूर्व, वर्तमान और भविष्य देख सकते हो। हम ये सोच रहे थे इसको इतना नीचे क्यों रख दिया भगवान ने, बड़ा निम्न माना है, पहले 8 बताई, उसके बाद 10 बताए, उसके बाद ये बता रहे त्रिकालज्ञ। तो त्रिकालज्ञम क्या है? जैसे हमारे ऋषि मुनि भी त्रिकालज्ञ थे, राइट। व्यासदेव के लिए कहा गया, जब व्यासदेव भागवत लिखना प्रारंभ कर रहे हैं तो वो आगे का भी बता रहे हैं, पीछे का बता रहे हैं, वर्तमान का बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, तो त्रिकालज्ञ। और फिर एक सिद्धि है जहां गर्मी, सर्दी या अन्य जो द्वंद्व है, अद्वंद्वम उसको कहा जाता है, अद्वंद्वम। द्वंद्व मतलब सर्दी गर्मी, जो भी विजय पराजय इत्यादि, सो उसमें वो द्वंद्वों में फंसता नहीं है। तो गर्मी हो, सर्दी हो या जो भी प्रकार के द्वंद्व, उससे वो सहन कर लेता है। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को यही कहा था ना, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व, सहन करो। तो वो एक सिद्धि है जो भक्ति से बड़ी सरलता से आ जाती है। आगे एक सिद्धि बताई है कि लोगों के मन को जान लेना, क्या है उनके मन में, खतरनाक सिद्धि है एकदम, क्या चल रहा है। क्योंकि मन में कोई व्यक्ति कुछ भी रखता है, हमें ध्यान है, हमने बहुत पहले एक, जब छोटे थे तो बचपन में एक टीवी सीरियल देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो वो सोचता था घर वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मेरा ध्यान रखते, लेकिन जो घर वाले थे वो बस बूढ़ा पड़ा हुआ है, कब मरेगा सोचते रहते थे। लेकिन उसको उसको लगता था कि नहीं है। एक दिन वो कहीं बाहर गया, उसको कोई चश्मा मिल गया, ये किसी ने कल्पना की थी, तो उसको चश्मा मिल गया। वो चश्मा पहनकर आया घर में, तो और वो चश्मा बड़ा जादुई चश्मा था कि उससे जो सामने वाला मन में सोच रहा है इसको पता चलता था। तो जब उसने चश्मा पहना तो वहां जो खड़ा था सामने उसको पता चला इसने क्या, उसको लगा ये क्या हो गया। उसने चश्मा उतारा, फिर पहना, तो फिर उसको सुनाई दिया कि ये क्या बोल रहा है, मन में क्या सोच रहा है। उसको लगा बहुत अच्छा, मैं लेके घर में जाता हूँ। तो घर में लेकर आया, बताया नहीं किसी को कि इस चश्मे का ये लाभ है। तो चश्मा पहना उसने, तो जो जो उनके मन की बातें थी सुनी, उससे इतना दुखी हो गया एक ही दिन में कि उसने चश्मे को जाकर तोड़ दिया। बोले जरूरी नहीं है ये चश्मा, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे बातें उसके बारे में सोच रहे थे कि ये देखो बूढ़ा चश्मा लगा कर घूम रहा है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ऐसे कुछ कुछ उदाहरण सब आने लगे कि ऐसे घूम रहा है, ये कर रहा है, और कब मरेगा। तो उसको सब सुना उसने कि इनके मन में क्या हो रहा है। तो बेचारा इतना परेशान हो गया, बोले मैं सुखी था कि ये नहीं था चश्मा, तो मुझे लगता था ये लोग बहुत मेरा आदर करते सम्मान करते। लेकिन तो वो ये चीजें हैं कि अगर हम किसी के मन की बात जान भी जाएं तो कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा हम लोग बहुत जल्दी मृत्यु की ओर भागेंगे कि जीने से अच्छा है मर जाएं। फिर आखिरी दो सिद्धियों का वो वर्णन करते हैं कि जो सूर्य का, जल का या जहर का, अग्नि का प्रभाव होता है, उनसे उनको वो रोक सकता है। एक सिद्धि आ जाती है तो उसका प्रभाव नहीं होता। आप जानते हैं कि गांव में अगर किसी सांप कोई किसी को काट ले तो जहर कैसे निकाला जाता है, मंत्र से। कई जगहों पर होते हैं मंत्र से जहर समाप्त कर देते हैं, तो जहर का प्रभाव खत्म कर देते, कोई उसको जरूरत नहीं है, इंजेक्शन लगाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। तो ये एक सिद्धियां है। तो अंतिम सिद्धि वो वर्णन करते हैं कि कभी किसी के द्वारा जीता नहीं जाएगा, वो अजीत रहेगा, अपराजय, पराजय कभी होगी नहीं उसकी। तो ऐसे वर्णन करने के बाद भगवान वर्णन करते हैं कि एक योगी, एक साधु जो योग की विद्या के द्वारा मेरा ध्यान करता है, वो इन चीजों को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो फिर भगवान अब वर्णन करते हैं उद्धव को, ये सोचकर कि मैंने उद्धव को ये बता दिया, आगे भी लोग सुनेंगे तो सब इसके पीछे भागे नहीं। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव ये जान लो कि ये जो सिद्धियां हैं ये भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। मतलब भगवान उसको रिजेक्ट कर रहे, और केवल बाधा नहीं, कहते हैं ये समय की बर्बादी है। बस उस व्यक्ति के लिए जो परम योग का पालन कर रहा है, मतलब भक्ति योग का पालन कर रहा है, भगवान कह रहे समय की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है, ये केवल बाधाएं हैं, तो इसलिए इनको त्याग देना चाहिए। तो यहां भगवान क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इसके पीछे भागना समय की बर्बादी है? पहला कारण, भक्ति इन सारी सिद्धियों को प्रदान कर सकती है, भक्तों में होती है। बड़ा ऐसा नहीं कि भक्त हमेशा वो दिखाते रहते हैं, उनको जब भगवान की सेवा के लिए प्रकट करना होता है करते हैं। ये सारी सिद्धियां हैं भक्तों के अंदर। कभी कभी भक्तों को पता भी ना हो, ऐसा नहीं कि भक्तों को पता होता है मेरे अंदर ये सारी सिद्धियां, भक्ति कर रहे हैं वो सिद्धियां आ जाती हैं। और कभी कभी हो जाता है, भक्त भी आश्चर्य करते हैं। प्रभुपाद ने बहुत पहले कह दिया जब मंदिर नहीं थे, 108 मंदिर हैं, बेंच पर बैठे हुए थे, एक व्यक्ति ने पूछ लिया आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया मेरे हजारों शिष्य हैं, 108 मंदिर हैं, बिल्कुल नहीं थे लेकिन बोल दिया और हो गया, वही हुआ। तो भक्तों के अंदर वो सिद्धियां क्यों होती हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं। तो पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि भक्ति ये सारी सिद्धियों को प्रदान कर सकती है, इसीलिए इसके पीछे भागो मत, भक्ति के पीछे, कृष्ण के पीछे भागो। फिर भगवान कहते हैं कि ये जो सिद्धियां हैं, किसी को जन्म से प्राप्त होती हैं, किसी को मंत्र से प्राप्त होती हैं, किसी को तपस्या से प्राप्त होती हैं, लेकिन ये सब भक्ति से प्राप्त होती है। जन्म से कैसे? मान लीजिए किसी का जन्म देवलोक में हो गया, सिद्ध लोक में हो गया, तो उसको वैसी सिद्धियां मिल जानी है। और तो और, जैसे पानी में बने रहना, मछली को जन्म से ही सिद्धि प्राप्त होती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हवा में उड़ना, पक्षी को जन्म से मिली हुई है सिद्धि। तो ये जो सिद्धियां, ये तो ऐसे ही 84 लाख योनियों में मिल जाती है, उन सिद्धियों के लिए क्यों पीछे भागना। तो भगवान कह रहे हैं जो जन्म से मिलती है या मंत्र से मिलती है, इन सब के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। तो क्या नुकसान है इन सिद्धियों में? हमने सुना भी इतनी अच्छी अच्छी सिद्धियां हैं, हमें मिल जाए तो हम लोग बहुत सारे मंदिर बना दें, सबके मन को कंट्रोल करके उनको भगवान का भक्त बना दें, बहुत कुछ कर लें। तो सिद्धियों में क्या नुकसान है? सबसे पहला, सिद्धियां ये हमारे अंदर एक नियंत्रक का भाव लाती है कि हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो जब हमारे अंदर नियंत्रक का भाव आता है, हम भूल जाते हैं कि कृष्ण बड़े नियंता है। तो ये पहला नुकसान है भक्ति, ये सिद्धियों का, कि हम ये सोचते हैं कि हम नियंता हैं। दूसरा, इन सिद्धियों के द्वारा हमें और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने की भावना आती है, ये इंद्रिय तृप्ति करने की सुविधा मिलती है। आप कहीं से भी कुछ भी ला सकते हो, तो क्या है, इंद्रिय तृप्ति करोगे, तो इसलिए सुविधा मिलती है। ये दूसरा खतरा है। तीसरा खतरा है कि हम सोचने लगते हैं कि अब हम स्वतंत्र हो गए, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी शक्ति, इतना पावर हमारे पास है, तो इसलिए स्वतंत्रता का भाव आता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि ऋषि मुनि जो हैं, ये देखिए कि ऐसा नहीं कि उनके पास ये सिद्धियां नहीं है, लेकिन वो परम दृष्ट्वा, वो आगे के ऊपर के रसवर्जम रसोप्यस्य, उस रस को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो क्या चेतना होगी, क्या ऐसा है ऋषि मुनि जो इस सबको त्याग देते हैं, इन सिद्धियों को, उनके अंदर है सिद्धियां, वो गंगा में डुबकी लगाते हैं स्वर्ग में और पृथ्वी पर निकलते हैं गंगा से बाहर, उनके अंदर सिद्धियां हैं, लेकिन वो इन सिद्धियों को त्याग कर कहां बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, क्या प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए जो सिद्धियां हैं ये अंततः, या योग की जो पद्धति है, अंततः हमें भगवान तक ले जाती है। इन योग सूत्रों को पतंजलि ने लिखा, और पतंजलि जब ये इन सिद्धियों का वर्णन कर देते हैं, तो इन सिद्धियों का वर्णन करने के बाद वो कहते हैं अंत में, इन सिद्धियों का वर्णन करने के बाद, कि अब आपको ये सिद्धियां मिल गई हैं, और अब इन सिद्धियों को त्याग कर, देखिए पतंजलि ने लिखा है जो योग सूत्रों में, कि अब इन सिद्धियों को त्याग कर आपको जो भी मन में बुराइयां हैं, दोष हैं, ये दोष तब निकलेंगे जब आप इन सिद्धियों को त्याग दें। ये स्वयं वो लिखते हैं कि सिद्धियों को त्यागिए तभी सारे दोषों से मुक्त होगे, शुद्ध जीवन होगा। तो पहले कहते ये करो, सिद्धियां मिलेंगी, अंत में कब इनको भी त्याग दो, तब शुद्ध जीवन आएगा। और वो आगे कहते हैं कि शुद्ध या हर चीज को प्राप्त करने का अंतिम मार्ग वो देते हैं, और वो कहते हैं कि ये सारी जो शक्तियां हैं उस व्यक्ति को आएंगी जो शुद्धता की ओर, स्वाभाविकता, जिसका मन शुद्धता की ओर भाग रहा, उसके अंदर ये शक्तियां आ सकती हैं। भगवान भगवत गीता में कहते, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते नंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। वो कहते हैं कि ये जो योगी है, इन सारे योगियों में श्रेष्ठ है जिसका मन मेरी ओर भाग रहा। और पतंजलि ने भी यही कहा कि जिसका मन शुद्धता की ओर भाग रहा वो इसको प्राप्त कर सकता। सो इसीलिए हमें आदत होती है चमत्कार देखने की, बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई चमत्कार करता है, लेकिन अगर हमें चमत्कार देखने हैं तो हमें अपने आसपास चमत्कारों को देख लेना चाहिए। दुनिया में देखिए कितने सारे चमत्कार चलते, भगवान की सृष्टि में कितने चमत्कार हैं, तो हमें उनको देख लेना चाहिए, चमत्कारों को, अगर चमत्कार ही देखने की इच्छा है। हम लोग रोज भोजन खाते हैं, भोजन अंदर जाता है, रक्त में बदल जाता है, और जो वेस्ट चीजें हैं वो मल से बाहर जाती हैं, सब कहां से चल रहा है, इसको हम चमत्कार नहीं देखते। एक मशीन है और ये एक ऐसी मशीन है कि अपने जैसी दूसरी मशीन को वो जन्म दे देती है, ये चमत्कार नहीं है। तो बहुत सारे चमत्कार हमारे आसपास है, हम उनको देखते नहीं। इसीलिए उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम भागे नहीं इन सिद्धियों के पीछे, बल्कि हमें कृष्ण के पीछे भागने का प्रयास करना चाहिए, जैसे ऋषि मुनि थे। तो ऋषि मुनि जंगल में रह रहे थे इन सिद्धियों के पीछे नहीं, वो रह रहे थे एकांत में भगवान पर ध्यान करने के लिए। ऐसे ही हम लोग भी इस कॉन्क्रीट जंगल में रह रहे हैं, तो इस कॉन्क्रीट जंगल के ऋषि बनना चाहिए कि हमें ध्यान ये सब चीजों पर नहीं, हमें ध्यान भगवान पर करना चाहिए। और इस दृष्टि से अगर हम अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। और वही अगले अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे। उद्धव ने प्रश्न किया भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, विभूतियों के बारे में, और फिर भगवान उसको बताएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, कोई प्रश्न है किसी का? सिद्धियों के विषय में मत पूछिएगा कि कैसे प्राप्त करें, और कुछ मार्ग बताइए, कुछ आनंद आए जीवन में। यस प्रभु। मन पर फोकस करना, हाँ आई थिंक, पता नहीं उसमें दोनों में यही वर्णन हुआ है कि मन को जान लेना, पावर टू नो प्रेजेंट, अच्छा मन की बात भी हुआ था राइट, दूसरों का मन जान लेना, और आई थिंक प्रमुख सिद्धियों में भी वो है ना। कौन सी सिद्धि थी वो? हाँ प्रमुख सिद्धियों में तो नहीं दिख रहा है मन। हाँ अच्छा उसमें है, नहीं मन का तो एक ही जगह आ रहा है, नोइंग द माइंड ऑफ अदर्स, या हमने कुछ मन शब्द बोल दिया होगा, एक ही जगह है, सॉरी, हो सकता है हमारे उससे कुछ निकल गया हो। ये क्या हो गया, चला कि नहीं जो सो उसको ले आओ कुछ, या वो नहीं आएगा, किसी के मोबाइल पे चालू है। कोई प्रश्न आप लोगों के हो जो जूम पर देख रहे हैं? ओके, वहां पर है कोई तो बता दो उस पर देख के, तो बोलो, अनम्यूट करो, वहीं से आवाज आ जाएगी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? हरी बोल, आवाज आ रही है प्रभु जी?
पूछो प्रश्न, पूछो, बता दो क्या।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने 7 सिद्धि बताई है, 8वीं सिद्धि कौन सी है प्रभु जी? अष्ट सिद्धि में
काम वचायिता आखिरी सिद्धि, अष्ट सिद्धि में है काम वचायिता, कहीं से भी कुछ भी प्राप्त कर लेना।
ये 7 ही हो रहा है प्रभु जी, एक बार आप रिपीट कर देंगे प्लीज?
क्यों, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो आप?
नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए।
ओके, अनिमा मतलब बहुत छोटे से छोटे हो जाना, फिर महिमा बड़े से बड़े हो जाना, लघिमा हल्के से हल्का हो जाना, प्राप्ति जो भी इच्छा है उसको प्राप्त कर लेना, प्रकाम्य अनुभव करना किस चीज का, कोई भी जो भोग की वस्तु है उसको अनुभव कर लेना, इशिता माया की जो विभाग है उनको वश में करना, वशयिता मतलब तीन जो गुण हैं उनके प्रभाव में ना रहना, और काम वशयिता कहीं से भी कुछ चीजों को लेना।
धन्यवाद।
आठ है, सात है, कितना बोला हमने, आठ है ना। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ,
हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट कर,
वहीं से अनम्यूट कर,
प्रभु जी आवाज आ रही है आपको,
तो बोलो, बोले प्रश्न।
हाँ प्रभु, मेरा प्रश्न ये था कि इस सब्जेक्ट से थोड़ा हटके है, बट ये कार्तिक मंथ चल रहा है, कार्तिक मंथ के मतलब ये सॉरी कनागत मंथ चल रहा है, श्राद्ध के बारे में मुझे कुछ पूछना था, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ
श्राद्ध के विषय में?
जी
हाँ पूछिए
प्रभु जी। श्राद्ध जो है, वैष्णव को श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
वैष्णवों को श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपने पूर्वजों की लगता है कुछ चिंता नहीं करते हो एकदम। सो भगवद गीता में भी भगवान पहले अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं कि अगर समाज में उत्पात होता है, लोग मारे जाते हैं, तो एक नुकसान बताते हुए वो बताते हैं कि लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक क्रिया ये बंद हो जाएगी अगर ऐसा किया गया। तो वहां भी श्राद्ध का वर्णन किया है। सो वैष्णवों को श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? निश्चित करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने किया, स्वयं कृष्ण उपस्थित थे वहां पर महाभारत के युद्ध के बाद, और जितने भी लोग, क्योंकि जितने मारे गए अधिकतर सारे युधिष्ठिर के संबंधी थे, तो उन्होंने किया, और इतना ही नहीं गंगा में जाकर तर्पण भी किया। तो ये वर्णन है भागवत में, हम सुनते हैं। सो इसलिए श्राद्ध निश्चित करना चाहिए, लेकिन श्राद्ध कौन सा करना चाहिए? ज्यादातर जो श्राद्ध बताए जाते हैं वो कर्मकांडी श्राद्ध होते हैं, अब ये करो। श्राद्ध भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है जहां सांकेतिक किया जाता है, वो आटे के गोले से कुछ बनाए जाते हैं और उससे किया जाता है। दूसरा कर्मकांडी होता है, ये दान करो, वो दान करो, ये करो, उससे ये होगा, छतरी, जूता, पता नहीं क्या क्या। और एक होता है वैष्णव श्राद्ध। तो वैष्णव श्राद्ध क्या है? साधारणतः अन्य श्राद्धों में हमने देखा है कि लोग कुछ भोजन बनाकर सीधा जो मृत है उनको लगा देते हैं और फिर वो अन्यों को देते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भक्तों को तो बिल्कुल ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए साधारणतः जो भक्त होते हैं वो ऐसे लोगों के घर पर जाकर खाते नहीं है जहां पर श्राद्ध हो रहा है। वैष्णव श्राद्ध नहीं, कर्मकांडी श्राद्ध। सो वैष्णव श्राद्ध की पद्धति भी दी गई है। वैष्णव श्राद्ध की पद्धति क्या है? ये जानते हुए कि उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा हरि नाम से। तो अगर आपको श्राद्ध करना है, जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय, अगर आपको श्राद्ध करना है अपने पितरों के लिए या किसी के लिए भी जो चले गए हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि घर पर कीर्तन होना चाहिए। वैष्णवों को घर पर बुलाइए, कीर्तन कराइए, निश्चित कथा हो, और फिर भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद का वितरण हो। तीन चीजें अगर करते हैं तो इसका पूरा लाभ जो मृत व्यक्ति हैं उनको मिलता है, और वो सच्चा लाभ है क्योंकि आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। कोई कहते हैं कि वो धूप में चल रहे हैं, उनको छतरी दे दीजिए, तो किसी ब्राह्मण को छतरी दान दे दीजिए, उनको मिल जाएगी। समझ, मान लीजिए मिल भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नरक में अगर छतरी लेकर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कष्ट तो मिलने वाले हैं नरक के, छतरी से बचेंगे नहीं। तो इसीलिए हरि नाम जो है उनको नरक जाने से बचाएगा। नरक में सुविधा प्रदान करने का प्रयास मत कीजिए, नरक जाने से बचाइए। इसलिए वैष्णवों को करना चाहिए लेकिन वैष्णव पद्धति से। ठीक है प्रभु, और कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड रत्न।
हरे कृष्ण।
भीष्म पितामह का तो इच्छा मृत्यु का वरदान आशीर्वाद के रूप में था या ये सिद्धि के रूप में था?
उनको आशीर्वाद के रूप में था लेकिन सिद्धि के कारण वो उसको पूरा कर सके, तो आशीर्वाद था या आशीर्वाद के रूप में एक सिद्धि दी गई कि जब आपकी इच्छा हो तब आप उसको कर सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु। एक प्रश्न हो रहा कि जो ये श्राद्ध के दिन अगर मंदिर में वो करवा दें भोग तो मतलब वैष्णवों को तो?
हाँ, श्राद्ध के दिन मंदिर में भी करा सकते हैं, मंदिर में भी भोग कराएं। प्रमुख बात है कि जो आत्मा नहीं है या जा चुकी है उनके लिए कीर्तन होना चाहिए और वैष्णवों को भोजन कथा ये आवश्यक है। तो घर पे कराएं तो घर पे ठीक है, नहीं आपके सुविधा है आप मंदिर में करा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं।
हरे
कृष्ण। और किसका? हरे कृष्ण।
क्या
पूछा?
योगी जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं तो ये भी भगवान पे ध्यान लगाते तो ये भी शुद्ध होते हैं कि नहीं, इनका हृदय शुद्ध हो जाता है?
हाँ, क्योंकि हृदय में भावना इस जगत में कुछ आनंद की बनी रहती है जिसके लिए वे सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसीलिए पूर्ण शुद्धि नहीं होती उनकी। इवन भक्ति में भी अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे हृदय में इच्छा कोई और है तो फिर हमें पूर्ण शुद्धिकरण नहीं होता। लेकिन भक्ति और योग में एक अंतर है कि अगर आप अपने हृदय में कामनाओं को रखकर भी भक्ति कर रहे हो तो एक दिन हृदय शुद्ध हो जाएगा, ये भक्ति की शक्ति है। लेकिन योग में लगे हुए हैं तो वो नहीं होगा, वो शुद्धिकरण नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा अंतर योग और भक्ति में। ठीक है मित्र, और किसी का प्रश्न? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।